Om Shanti. Om Shanti. Attention, please. अभी हमारे बीच में उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा शिव की बगिया के रूहानी गुलाब विभिन्न प्रतिभाओं के धनी आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे बीच में स्वस्थ जीवन शैली को लेकर पहुंच चुके हैं। हम उनको स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। उनका थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। आदरणीय भ्राता जी परमात्मा के हर महावाक्य को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित करके तार्किक रूप से सिद्ध करने में प्रवीण प्रभु प्रिय बाबा की प्रत्यक्षता में तल्लीन डबल डॉक्टर आदरणीय भ्राता सतीश गुप्ता जी हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हम आपका जोरदार से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भ्राता जी आप मेधावी प्रतिभाओं के धनी। आपका जन्म 1959 में हुआ। आपने लौकिक में 1986 में दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में MBBS 1989 में दिल्ली से ही MD की शिक्षा प्राप्त की। आपने सन 1995 में परमात्मा आज्ञा में अपना स्वर्णिम भविष्य का साक्षात्कार किया और उसी समय से डबल डॉक्टर की आप भूमिका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत निभा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आदरणीय भ्राता जी की पहचान जिंदगी से हारे हुए लोगों को दिल के मरीजों को नई चेतना प्रदान करने वाले हैं आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आदरणीय भाई साहब आपका संध्याकालीन इस वेला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने अपने जीवन में अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आपने वर्तमान में 181 कैड प्रोग्राम के माध्यम से 11,000 से ऊपर पेशेंट के 100% ब्लॉकेज होते हुए भी उनके ब्लॉकेज को सिर्फ मात्र जीवन शैली के परिवर्तन मात्र से एवं आध्यात्म मेडिटेशन के माध्यम से नॉर्मल रिपोर्ट में परिवर्तित किया है। आदरणीय भ्राता जी या वरिष्ठ सलाहकार कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर। आप हेल्दी हार्ट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन इंडिया के अध्यक्ष हैं। आप सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार परिषद इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ILIB। आपको प्रेवेंटिव कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आदरणीय भ्राता जी योग में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डॉक्टर सुशीला ठक्कर राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी महान प्रतिभाओं के धनी डबल डॉक्टर आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हम सब के समक्ष उपस्थित हैं। दो चंद लाइन आपके लिए कहना चाहूंगी जो आपके व्यक्तित्व से झलकती हैं। सादगी सत्यता मधुरता ये आपके जीवन की पहचान है। सादगी सत्यता मधुरता ये आपके जीवन की पहचान है। आप तो करते सभी के दिल का इलाज इसीलिए तो महान है। आप तो करते सभी के दिल का इलाज इसीलिए तो महान है। प्रवीण प्रभु प्रिय परमात्मा सेवा में तल्लीन। प्रवीण प्रभु प्रिय परमात्मा सेवा में तल्लीन ये आपको ईश्वर का वरदान है। आपकी महानता पर तो ईश्वर भी मेहरबान है। आपकी महानता पर तो ईश्वर भी मेहरबान है। पुनः जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय भ्राता जी का इस संध्याकालीन वेला के सत्र में स्वस्थ जीवन शैली हम कैसे बनाएं? पेश हैं हमारे समक्ष आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, आदरणीय भ्राता जी का बैज और पुष्प गुच्छ के माध्यम से हार्दिक स्वागत सम्मान करेंगी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें। हम जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी का स्वागत और सम्मान करते ही रहेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक आदरणीय भ्राता जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे समक्ष स्वस्थ जीवन शैली हम कैसे बनाएं। मन के भी आप डॉक्टर हैं तो आप तन के भी डॉक्टर हैं, क्योंकि उस परम कलाकार परम पिता परमात्मा की से नित्य प्रति वो असीम शक्तियों की प्राप्ति कर आप स्वयं भी भरपूर रहते हैं और आपके संपर्क में जितनी भी आत्माएं आती हैं उनको भी भरपूर रखते हैं आदरणीय भ्राता जी। अभी हम सभी 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठेंगे एक गीत के माध्यम से।
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे
रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सभी स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, खुश भी रहना चाहते हैं, पर ऐसा देखने में आता है जो पिछले कुछ सालों में सर्वे हुए हैं, हम उनसे उन पे भी शेयर करेंगे आपसे कि क्या स्थिति है अभी आज के समय पर स्वास्थ्य की, और ऐसा हम क्या करें कि हम सदा स्वस्थ रहें, और मुख्य कारण क्या है। आज हम स्वस्थ नहीं हैं, इवन डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, बल्कि देखने में आया जो आज के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादा पीड़ित हैं, आम जनरल पॉपुलेशन से भी उनके अंदर सब रोग ज्यादा है, और जनरल पॉपुलेशन से वो 10 साल पहले मर जाते हैं जो डॉक्टर्स हैं ना। ऐसे 3-4 सर्वे हुए मद्रास में, अहमदाबाद में, और भी कई जगह सर्वे हुए हैं, उनमें पाया गया कि डॉक्टर्स आर डाइंग 10 इयर्स यंगर देन द जनरल पॉपुलेशन। तो सोचिए जो रोग का निवारण करने वाले हैं अगर वो ही जल्दी मर जाते हैं सब कुछ जानते हुए, तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा। इसका मतलब है कि नॉलेज काफी नहीं है, ज्ञान काफी नहीं है अपने जीवन को बदलने के लिए, राइट। ज्ञान की एप्लीकेशन बहुत आवश्यक है। जैसे हम जानते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डॉक्टर, कि हमको डेली सैर करनी चाहिए, बिना सैर किए 45 मिनट सैर किए में नाश्ता नहीं करना चाहिए, पर हम में से कितने लोग सैर करते हैं, आता है डेली सैर करते हैं, ऊंचा ऊंचा आता है, देखिए 10% भी नहीं उठा, 10% भी नहीं उठा रहे हैं। आप जितने भी प्रेजेंट हैं उसमें 10% भी डेली सैर नहीं करते, जबकि जरूरी है सैर करना, क्योंकि हमारी बॉडी 80,000 अरब कोशिकाओं से बनी हुई है, और हर सेल में 1 सेकेंड में 1,00,000 क्रिएशन होती है, और वो टॉक्सिन्स हम 1 सेकेंड में वॉश भी कर लेते हैं। तो जब हम जल्दबाजी करते हैं ना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर आता है आपको, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर होता है आपको भी होता है, कहीं जाना होता है, कोई सभा में जाना होता है, कहीं मीटिंग होती है, प्रेशर तो आता है ना, परफेक्शन का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, कंपटीशन का प्रेशर, कंपैरिजन का प्रेशर आता है, इसे जल्दबाजी कहते हैं आम भाषा में, हरी सिकनेस कहते हैं, तो 1,20,000 रिएक्शन हो जाती है एक कोशिका में। और जब चिंता करते हैं ना कैसे होगा एंजाइटी, तो 1,40,000 रिएक्शन हो जाती है। जब अंदर से इरिटेट हो जाते हैं तो 1,60,000 रिएक्शन हो जाती है। जब गुस्सा करते हैं 1,80,000 रिएक्शन हो जाती है एक कोशिका में। और जब जोर से गुस्सा करते हैं तो 2,00,000 भी रिएक्शन हो जाते हैं। पर शरीर के अंदर ऐसी फैसिलिटी है कि 1,00,000 रिएक्शन के टॉक्सिन्स तो हम 1 सेकंड में वॉश कर सकते हैं, 1 सेकंड, क्योंकि हमारा हार्ट, हमारा दिल 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सिकुड़ भी जाता है, फैल भी जाता है, मतलब खून बॉडी में पहुंच भी जाता है फ्रेश खून, और गंदा खून वापस आ भी जाता है, तो मतलब सारी टॉक्सिन्स लेकर के वापस आ जाता है, वो वॉश हो जाता है। तो 1,20,000 रिएक्शन हुई जल्दबाजी की वजह से, वो टॉक्सिन साफ नहीं हो पाते, वो फ्री रेडिकल साफ नहीं हो पाते। 40,000 जो एक्स्ट्रा रिएक्शन की हमने चिंता करके, वो साफ नहीं हो पाते। जो हमने चिड़चिड़ करके इरिटेट होकर हमने जो 1,60,000 रिएक्शन की, वो 60,000 एक्स्ट्रा रिएक्शन के टॉक्सिन वॉश नहीं होते। ऐसे 80,000 एक्स्ट्रा रिएक्शन की उसके टॉक्सिन वॉश नहीं होते। इसलिए जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, जो 5 विकार है ना, जो आप सब भी जानते हैं, काम क्रोध, जो आप सिखाते भी हैं लोगों को कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार सभी रोगों की जड़ है, चाहे मन के रोग हो चाहे तन के रोग हो, सभी की जड़ ये 5 विकार है। इन 5 अब इन्हीं पे हम सोचे बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपसे, आपसे रूढ़िहान करेंगे कि कैसे आज के समय में मनुष्य क्यों रोगों से पीड़ित होता जा रहा है, और उसका मुख्य कारण तनाव है, टेंशन है। आज लगभग 95% से अधिक बीमारियां स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, तनाव से रिलेटेड, तनाव से होती हैं। और इवन जो कोविड आके गया ना पीछे, कोविड का पैंडेमिक आया, कोविड की महामारी आई थी, उसमें भी देखा गया वो लोग मरे जिनके अंदर इमोशनल इम्यूनिटी नहीं थी, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी नहीं थी, जिनके अंदर एंजाइटी थी, डर था, जो एंजाइटी जिनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, डर लग रहा था उनको, ये जो बहुत ही टेंशन में रहने वाले व्यक्ति थे वो उनकी डेथ ज्यादा हुई। और जो वैसे थे आम, जो मतलब व्यक्ति थे जो उनको जो कि मतलब सीरियस होके भी फेफड़े पूरे खराब, लगभग पूरे खराब होने के बाद भी ठीक हो गए, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, 90 साल के भी थे वो भी ठीक हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी होना, मेंटल इम्यूनिटी होना, जिनके पास थी उसने प्रूव किया। इवन जुखाम भी जो बार बार होता है ना, इसके पीछे भी हमारा क्या कारण क्या है, स्ट्रेस। और इवन जो आपके एक्सीडेंट्स होते हैं उसका कारण भी क्या है, स्ट्रेस। क्योंकि आदमी तनाव के कारण, इसका ध्यान कहीं और होता है, खुद कहीं होता है, या नशा किया होता है, वो उसका कारण भी तनाव ही है। आदमी शराब पी के गाड़ी क्यों चलाता है, उसके पीछे भी उसके मन में स्ट्रेस है, तभी वो शराब पीता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज कि क्या हम मेडिटेशन के द्वारा एक स्ट्रेस फ्री हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, कि मेडिटेशन हमें कैसे मदद करता है स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में। क्योंकि सब में लगता है हर बीमारी, लगभग हर बीमारी दुनिया की, इन्फेक्शंस हो चाहे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, एसिडिटी, माइग्रेन, कोई बीमारी भी हो, लीवर खराब हो गया हो, पेट खराब हो गया हो, हड्डियों का दर्द हो, घुटने खराब हो गए हो, कमर खराब हो गई हो, कोई भी बीमारी, वो सभी का कारण स्ट्रेस, तनाव है। तो देखते हैं कि वो बेसिक कारण, क्योंकि पिछले 1970 के बाद, 1970 से पहले बीमारियां बहुत थोड़ी थी, ज्यादा इन्फेक्शन होते थे, हैजा हो गया, कॉलरा हो गया, हैजा मतलब कॉलरा की बात है, टीबी हो गई, मलेरिया हो गया, ऐसी कई बीमारियां थी जो आती थी, और गांव के गांव चेचक आ गई, पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया, है ना, ऐसे ऐसे बीमारियां आती थी जो पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। मदर्स को, माँ जब गर्भवती होती थी, बच्चा पैदा होता था, उसके अंदर माँ की मृत्यु बहुत ज्यादा होती, बच्चे मर जाते थे 1 साल के पहले पहले, पैदा होने के टाइम या फिर पैदा होने के बाद 1 साल में, तो उसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो अभी जो है क्या हुआ कि उसके बाद जब से ये औद्योगिकरण हुआ, गांव का शहरीकरण हुआ, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो टूट गया, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया। पहले एक घर में तीन पीढ़ियां, दादा दादी, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते थे, और अब माता पिता और बच्चे बस न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अब बच्चों की केयरिंग, उनको प्यार, उनकी केयर खत्म हो गई, उनकी रेयरिंग खत्म हो गई, तो और स्पिरिचुअल सिस्टम खत्म हो गए। घरों में जो आस्था था ना, आस्था खत्म हो गई। अब लोगों को स्ट्रेस ज्यादा अब आने लगा पिछले 55 साल में, और तब से ही बीमारियां बढ़ी, जिनको हम NCD कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, एसिडिटी, दमा, आप सारी उम्र दवाई खाते रहो, जब तक खाओगे दवाई बीमारी कंट्रोल कर सकते हो पर बीमारी खत्म नहीं कर सकते, सारी उम्र दवाई खाते रहते हो। बाईपास कर लो, कैंसर दवाई खा लो, कीमोथेरेपी कर लो, रेडियोथेरेपी कर लो, सर्जरी करा लो, फिर कब दोबारा कैंसर वापस आएगा पता नहीं, दवाई फिर भी खाते रहना पड़ता, उसके बाद भी कैंसर वापस आ जाता। तो इनका कारण क्या है, तो आज हम देखते हैं कि हाउ मेडिटेशन इज गोइंग टू हेल्प अस। कोई भी, जो आप सभी धार्मिक प्रभाग के सभी भाई बहने पधारे हैं, संत जन पधारे हैं, आप इस एरिया में काफी वर्षों से लगे हुए हैं, मैं आप सभी का वेलकम भी करता हूं। और आज आपको इस सेशन में आपकी कोई कमेंट्स होंगे तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी इस पर कुछ बताना चाहें तो बताएं। ये हमारा, मैं पहले दिल्ली में, मैं स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में था, वहां कार्य करते करते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के एंजियोप्लास्टी बाईपास करके भेजते हैं, लोग हार्ट अटैक करके आते हैं, और कुछ ही दिनों में स्टेंट लगा के भेजते हैं या बाईपास करके भेजते हैं, कुछ ही दिनों में फिर बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको एंजियोप्लास्टी बाईपास करना पड़ता है। हम जब कहते हैं दोबारा से कि आप दोबारा एंजियोप्लास्टी करा लो, तो लोग यही कहते थे कि डॉक्टर साहब हमने पहला स्टेंट लगवाया, अपना घर बेच के लगवाया, क्योंकि बीमारी उन दिनों स्मॉल मतलब लोअर मिडिल क्लास में भी आनी शुरू हुई थी। 1960 के पहले हार्ट अटैक सिर्फ रिच लोगों को होते थे, बड़े बड़े लोगों को होते थे, और 60-70 साल की उम्र के बाद होते थे। किंतु 94-95 में ये बीमारी 40 साल से भी नीचे की उम्र में आनी शुरू हुई थी, 35 में, 36 में। और ये तो अभी तो आप जानते हैं कौन सी उम्र में आने लगी है हार्ट अटैक, 20-22-25 साल में भी आना, 18 साल की उम्र में भी आने लगे, अभी तो किसी भी उम्र में हार्ट अटैक आ जाते हैं। कोई कहे तो किसको हार्ट अटैक आ सकता है, किसको हार्ट अटैक आ सकता है, जिसके पास भी हार्ट है उसको हार्ट अटैक आ सकता है। आप सभी के पास हार्ट है, सभी के पास हार्ट है ना, तो कोई पूछ के तो नहीं आता हार्ट अटैक, पूछ के आता है, पूछ के नहीं आता। अभी सभी सुना मैंने, कल परसों शायद हुआ, कथावाचक थे कोई, वो कथा कर रहे थे, राम कथा कर रहे थे, कथा करते करते वो हार्ट अटैक आ गया। कोई चौपाई गा रहे थे, कौन सी थी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये चौपाई पूरी हुई, उन चौपाई पूरी नहीं, यहीं पर थे, रसरी आवत जाते बस उसके बाद ही हार्ट अटैक आ गया, और वहीं क्लप्स हो गए, हॉस्पिटल भी पहुंच नहीं पाए। तो ये हमारा, मैंने वहां से फिर छोड़ दिया, मैंने रिसर्च शुरू की। डॉक्टर कलाम साहब उन दिनों DRDO के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने कहीं मेरी स्पीच सुनी होगी, किसी उनके किसी दोस्त ने, उन्होंने डॉक्टर कलाम साहब से शेयर किया, तो डॉक्टर कलाम साहब ने मुझे बुलाया और फिर हमने उनसे आपस में बातचीत की। तो डॉक्टर कलाम ने ये कहा कि डॉक्टर सतीश गुप्ता आप जो है अगर ये रिसर्च करो इस पर तो मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा DRDO आपके साथ काम करेगा। और सचमुच फिर हमने इकट्ठे होकर काम किया और पिछले 26 साल से हम इसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं। तभी से हम हार्ट के पेशेंट्स जो आते हैं जिनकी एंजियोग्राफी होती है और उनमें ब्लॉक्स होते हैं, हार्ट अटैक आ चुका होता है या छाती में दर्द होता है, घबराहट होती है, पर प्रूवन डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी बाईपास भी हो चुका होता है, और कई कई लोग तो इनके, एक पेशेंट मेरे पास ऐसा है जिसके 16 बार स्टेंट लग चुके, 16 एंजियोप्लास्टी हो चुके, 16 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी, और एक बार बाईपास भी हो गया। एक पेशेंट की 13 बार एंजियोप्लास्टी हो गई, एक पेशेंट के 2 बार बाईपास हो, तो भी वो चल नहीं पाते क्योंकि बाईपास और एंजियोप्लास्टी सिर्फ टाइम पास है, जड़ का इलाज नहीं है। जिस कारण से हमें ब्लॉक पैदा होते हैं वो वहीं के वहीं रहता है और हम उस कारण को नहीं बदलते, मानसिक कारण को नहीं बदल पाते तो ब्लॉक वापस आ जाते हैं। तो मैं आपसे शेयर करता हूं आज कि कैसे, क्या है आज का सभी रोगों का कारण और कैसे हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें हम सभी स्वस्थ रहें। क्योंकि कुछ वर्ष पहले, जैसे मैंने बताया 1960 के पहले, काफी लोग ऐसे होते थे 90 साल की उम्र हो गई, वो कहते थे 90 साल की उम्र में तक आज तक हमें बुखार नहीं आया, दांत 32 के 32 मुंह में रहते थे। और आज तो आप देखो 5 साल के बच्चे को भी देखेंगे दांत में कीड़ा लगा होगा। वो समय भी था जबकि टूथपेस्ट नहीं थे, ब्रश नहीं थे, तो भी दांत में कीड़ा नहीं लगता था। और आज देखो तो ब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है और माउथ गार्गल भी है, एंटीसेप्टिक माउथ, तो भी मुंह में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग दांतों में, दांत खराब हो जाते हैं और कब से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। चलते हैं आगे। तो ये हमारा नीचे ट्रॉमा हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर है, ये भी ग्लोबल हॉस्पिटल की एक ब्रांच है। तो आज बात करते हैं तनाव क्या चीज है। आप में से बताएं कौन, स्ट्रेस क्या चीज है, आप में से कोई भी बताएं। आगे आगे जाओ ना, ये तो दिल की बातें करने जा रहे हैं आपके कॉमन। आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, सभी पीछे जो बैठे आगे आ जाओ, ये आपके काम की बातें हैं, आपकी रोजमर्रा की बातें। मैं कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहा कि आपकी, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग, है ना। आगे आगे जाओ, जब कुछ पीछे आएंगे पीछे बैठ जाएंगे, आप आगे आके बैठ जाओ। तो तनाव क्या है, आप में से कोई कमेंट करेंगे? एक माइक दे सकते हैं ऑडियंस में, एक माइक दे सकते हैं, एक माइक दे दीजिए, एक माइक यहां रख दें, जिसको भी बोलना है तो बोले। हाँ बताइए, आप में से कोई ऐसा जिसने कभी जीवन में तनाव फेस ना किया और टेंशन फेस ना की हो? यस, हाथ उठाओ, जिनको कभी टेंशन नहीं होती है, वेरी गुड। और कोई ऐसे हैं जिनको कभी टेंशन नहीं होती है? एक तो हमारे महात्मा जी ने उठाया, और भी कोई है तो बताइए। अच्छा, बाकी जिनको जिनको टेंशन होती है बताओ, तनाव क्या चीज है, कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं? टेंशन किसे कहते हैं? हैं जी, बहुत सोचते हैं उससे टेंशन होती है, और नेगेटिव थॉट्स टेंशन होती है। हाँ, एक माइक रख दीजिए किसको भी हो सकता है। तो देखिए, हम बात करते हैं स्ट्रेस क्या चीज है। स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज। हमारे जीवन में परिवर्तन रोज होता रहता है। देखिए, अभी दिन है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, कभी ठंडी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बरसात होगी। हमारा भी जीवन रोज बदल रहा है, हमारे साथी रोज बदल रहे हैं, उनका व्यवहार बदल रहा है, राइट? हर समय बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। और जब हम इस परिवर्तन को, नियम को, बिकॉज लॉ ऑफ लाइफ इज चेंज, जीवन का नियम क्या है? परिवर्तन। और जब हम, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, तो जब उस परिवर्तन को हम उससे रिएक्शन करते हैं तो हमें तनाव होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर आते हैं और आपको एक पति अपने घर में आता है, उसकी वाइफ यूजली उसको प्यार से वेलकम करती है, या उसको एटलीस्ट एक स्माइल करके या एक कप चाय पिला देती है, या एक कप उसको कुछ कैप गिलास पानी ऑफर करती है, किंतु आज वो चुपचाप मुंह पर्दी तरफ करके लेटी हुई है, बात नहीं कर रही। अगर पति आए और आकर के उसको ऐसा देख के उसको गुस्सा करना शुरू करे तो क्या क्या होगा? घर में टेंशन हो जाएगी ना, स्ट्रेस हो जाएगी। जबकि कारण हो सकता है उसकी उसकी तबीयत ठीक ना हो, उसको बुखार हो गया हो, या उसकी उसको ऐसे कैसी खबर सुनी हो जिससे वो अपसेट हो गई हो, राइट? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें पता लगाना चाहिए कारण क्या है, आज उनका बिहेवियर बदल क्यों गया। अगर हम कारण पता लगाएं, थोड़ी पेशेंस रखें, कारण पता लगाएं, तो घर में तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। हमारे, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, और हमारे पास हायर ब्रेन है, मतलब इसके मस्तिष्क कहते हैं ना, जानवरों के पास मस्तिष्क नहीं है। जानवरों की आंखें देखें ना, आंखों से यहां ब्रेन ऐसे जाता है, कुत्ता बिल्ली शेर उनके यहीं से, ऐसा हाथी को छोड़ के बाकी सबका माथा ऐसे जाता है, ये वाला पार्ट ब्रेन का है ही नहीं। तो यहां हमारी आई, यहां पर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, राइट? तो हमारे हमारे जो हम हायर बींग्स हैं, मनुष्य हैं, हमारे पास पांच तरह की इंटेलिजेंस है। अगर वो पांचों इंटेलिजेंस हम यूज कर लें कुछ भी करने से पहले, हमारे जीवन जब भी परिवर्तन होता है तो पांचों तरह की इंटेलिजेंस हम यूज कर लें तो हमको कभी भी तनाव नहीं होगा। पहले इंटेलिजेंस है, हम कहते हैं उसे इंटेलिजेंट कोशेंट, IQ बोलते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं एशिया, ASIAA। ए माना एनालिसिस, माना IQ। हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन हो या किसी और के जीवन में परिवर्तन हो जिनसे हम रिलेटेड हैं, या प्रकृति में कुछ परिवर्तन हो, तो हम IQ लगा के देखें, इसे एनालाइज करें, जमा घटा गुणा भाग करके देख सकते हैं हर एक के पास एक कैपेसिटी है और इससे क्या, इस मुझे क्या करना चाहिए। अब मैंने एनालाइज तो विश्लेषण तो कर लिया, फिर हमें सिंथेसाइज करके देखना चाहिए। सिंथेसाइज का मतलब है कि जिनसे मैं भावनात्मक रूप से मेरा रिलेशनशिप है, जैसे मान लीजिए मेरे घर के मेंबर्स हैं, मेरे परिवार के मेंबर्स हैं, या जहां मैं काम करता हूं, या जिस संस्था में मैं काम करता हूं, या जैसे आप आश्रम है आपके, या कोई ट्रस्ट है जिनसे आपका दिन रात संबंध है, ये मैं डिसीजन जो ले रहा हूं इससे उन पे क्या असर पड़ेगा, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ बोलते हैं, IQ, EQ, और तीसरा है SQ। SQ माना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो मैं करने जा रहा हूं मेरे ऊपर तो मेरे लिए तो अच्छा है कि तो मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, या मेरे जिनसे मैं रहता हूं कार्य करता हूं उनके लिए अच्छा नहीं, वो इसको EQ कहा, किंतु SQ है कि जिस समाज में मैं रहता हूं, जिस देश में मैं रहता हूं, जिस विश्व में मैं रहता हूं, उस विश्व में क्या असर पड़ेगा मेरे उस कर्म का, उस रिएक्शन, उस एक्शन का क्या असर पड़ेगा। चौथी जो बात है जिसको हम बोलते हैं SQ, चौथी जो बात है वो HQ है। HQ माना मैंने बताया एशिया, ए एनालिसिस सिंथेसिस, अपने साथ जोड़ के देखो, जिनके साथ रहते हो उससे जोड़ के देखो, इंटेग्रेशन माना सारे विश्व से जोड़ के देखो, और फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि हम अंत में सब कुछ करने के बाद क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, इसको बोलते हैं HQ, हैप्पीनेस क्वेश्चन। ये जो मैं करने जा रहा हूं क्या इससे मेरी खुशी गायब तो नहीं हो जाएगी, ये सामने वाली खुशी गायब तो नहीं हो जाएगी। और पांचवी जो बात है वो उसको बोलते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन, अर्थात मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जिससे भगवान से मेरा कनेक्शन कट जाए। क्योंकि जब कोविड के टाइम भी हमने ये AQ उसके उस टाइम आया जब कोविड जब हो जाता था, ना उसका बच्चा, ना उसकी वाइफ, ना हस्बैंड, कोई भी उसके पास नहीं जा सकता, और डेथ भी हो गई तो भी उसके पास कोई नहीं जा पाता था। उस समय एक ही सहारा था, वो परमात्मा का सहारा था। जिसके पास वो सहारा था, जैसे कहते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण, अर्जुन का सहारा श्री कृष्ण था, तो अर्जुन कभी घबराया नहीं युद्ध में। ऐसे अगर मेरा परमात्मा से कनेक्शन है, जिसे हम वर्टिकल कनेक्शन कहते हैं, वर्टिकल कनेक्शन, अगर मेरा वर्टिकल कनेक्शन ठीक है तो मेरे हॉरिजॉन्टल कनेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं। मुझे याद आता है हमारी जो बड़ी दादी जी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि, मैं उनका पर्सनल फिजिशियन रहा काफी साल, लगभग 18 साल आखिरी के टाइम में, आखिरी 18 साल में उनके साथ काफी रहा। और दादी जी ने कहा हुआ था कि डॉक्टर साहब, मतलब मेरे को कहती थी, गुप्ता जी आप मेरे पास मुरली के बाद 5 मिनट जरूर मिलके जाना है, काम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, मैं भी ठीक हूं, तो आप रेगुलर रूटीन चेकअप वो तो करते हैं, तो मेरे पास 5 मिनट बैठ के जाना। और जब दादी अकेली बैठी होती कभी ना मुझसे कोई ना कोई बात पूछती या मुझे बताती थी, सिखाती थी कुछ बात, तो दादी कहती, दादी ने एक दिन मुझे कहा, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? मैंने कहा इंचार्ज माना जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। हमारे यहाँ उस समय शांतिवन में 48 डिपार्टमेंट थे, तो मैंने दादी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज है ना, वो इंचार्ज है, उसे इंचार्ज कहते हैं। पर रियल मतलब क्या है इंचार्ज का, दादी आप बताइए? तो दादी ने कहा जो इन रह के, माना इन अंदर रह के जो अपने आप को चार्ज करते रहते, जो अपने आप को चार्ज करते रहते परमात्मा से, आत्मा रूपी बैटरी को निरंतर चार्ज करते रहते हैं। आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और आठों शक्तियां से भरपूर करते रहते हैं। और जो भी उनके साथ रहते हैं, इवन उसका शरीर, उसका जो बुद्धि है, मन है, संस्कार है, जो शरीर के आठों अंग हैं, उन आठों अंग, पांचों कर्मेंद्रियां आठों अंग हैं, उनको भी चार, उनको भी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर करते रहते हैं। क्योंकि शरीर की एक कोशिका को इन सातों एनर्जी की आवश्यकता है। क्योंकि हम इस बॉडी के तो, जब किसी और के इंचार्ज ना हो कि तो अपनी बुद्धि के तो इंचार्ज हैं, अपने मन के तो इंचार्ज हैं, अपने अपनी आदतों के इंचार्ज तो हैं, अपनी आंखों के तो इंचार्ज हैं, अपने कानों के तो इंचार्ज हैं, अपनी नाक के तो इंचार्ज हैं, अपने मुख के तो इंचार्ज है, नहीं है, अपने हार्ट के तो इंचार्ज हैं, अपने फेफड़ों के तो इंचार्ज हैं, नहीं, अपने पेट के, लीवर के तो इंचार्ज हैं, तो उसकी, उसको कौन करंट देगा? उनको भी पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां चाहिए ना? तो उसको चार्ज करता रहे। और जो उसके साथ रहते हैं, घर में या बाहर, कार्यस्थान पर या किसी संस्थान में या किसी आश्रम में, उन सभी को, जो भी उनके कंसर्न में आते हैं, उनको भी वो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां प्रैक्टिकल में उनको बांटता रहे। उसको बोलते हैं इंचार्ज। यस, और इंचार्ज, ऐसे इंचार्ज को कभी भी स्ट्रेस नहीं होती है, वो कभी तनाव में नहीं आता है। अगर हम किसी को आंख दिखा के, गुस्सा करके कंट्रोल में करते हैं, अपने साथियों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने नीचे वाले लोगों को, तो इसको इंचार्ज नहीं कहते, उसको कहते हैं आउट चार्ज। क्या कहते हैं इसको? आउट चार्ज। तो मैं क्या बनना है, इंचार्ज बनना है क्या आउट चार्ज बनना है? क्या बनना है? इंचार्ज, इन मन अंदर, अंदर रह के अपने सत्य में टिक करके अपने को आत्मा, क्योंकि ओम शब्द का अर्थ भी क्या है, मैं आप तो महात्मा है तो मैं आपको बोल रहा हूं, ओम शब्द का अर्थ जो मैंने सीखा है, दो शब्द से बना है, ओम, अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूं, मैं एनर्जी हूं, मैं ऊर्जा हूं, एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु सितारा हूं, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज हूं, जिससे मैं मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर के 80,000 कोशिकाओं को पोषित करता रहता। अगर मेरा वर्टिकल कनेक्शन ठीक है तो नीचे का जो मेरा कनेक्शन, ये शरीर, मन, बुद्धि, शरीर और शरीर के आठों अंग और मेरे आसपास जितने भी हैं, मेरे संबंधी, संपर्क में आने वाले, मेरे कॉन्टेक्ट में आने वाले लोग, उनको भी मैं, उनको भी, उनसे संबंध अच्छे बना के रख सकता हूं। क्योंकि सभी को मुझसे क्या चाहिए, सभी रिश्तेदारों को क्या चाहिए, सभी संबंधी को क्या चाहिए, मेरे साथ रहने वालों को क्या चाहिए, सबको चाहिए ये व्यक्ति चुपचाप हम जो कहें सुनता रहे, हमें प्रेम करता रहे, हमारी बातों को मानता रहे, मैं मानती रहे, नहीं, ये तो चाहते हैं, मुस्कुराता रहे, सहन करता रहे, समाता रहे और हमें सहयोग करता रहे, ये तो चाहते हैं हम। हरेक को खुश करने के बजाय क्या करें, मैं इसको भी खुश करूं, इतनी देर में मैंने इधर खुश किया, फिर इधर खुश करने लगा, इतनी देर में नाराज हो गए, है ना, फिर यहां से आगे बढ़ा तो ये नाराज हो गए, फिर उसको खुश करने की कोशिश की, तो खुश होता ही नहीं कोई भी। क्योंकि तो मैं अगर उससे कनेक्ट हो जाऊं, उसको खुश रखूं, उससे मेरा संबंध मधुर हो, तो नीचे वाले अपने आप मेरे हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस, ये दुनिया में मेरे कनेक्शन अपने आप ठीक हो जाते, राइट। तो ये अगर हम सीख जाएं, पांच आई, पांच क्यू लगा लें कुछ भी क्रिएशन करने से पहले, कुछ भी कर्म करने से पहले, क्योंकि हम हायर ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास ये शक्ति है, तो ऐसा प्राणी होने के कारण अगर हम, हमारे पास ये विशेष फैसिलिटी है कि हमारे पास IQ भी है, EQ भी है, SQ भी है, HQ भी है और AQ भी है, और स्पेशली तीन चीज सबसे लास्ट वाली, SQ, अपने को आत्मा समझ के हर समय परमात्मा से कंबाइंड होके और तब हम रहें और सबको आत्मा समझ के व्यवहार करें, दूसरा सदा मेरी खुशी बनी रहे, खुशी मेरी तभी बनी रहेगी जब मेरा, मेरी बैटरी चार्ज होती रहेगी, और लास्ट एडवर्सिटी कोशेंट, कि मैं उससे इतना संबंध प्रगाढ़ बना दूं, सर्व संबंधों से उसको अपना बना लूं, मेरा तो एक संसार, मेरा वही एक संसार है, आरती में तो हम गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। और ये बात सच है, प्रैक्टिकल में सच है कि हमारे पास जब है वो करंट, वो शांति प्यार खुशी की एनर्जी है, तभी हम सबको खुश रख सकते हैं। तो जब हम ये लगा करके करेंगे, ये हमेशा हमें कभी भी तनाव नहीं हो सकता, और तनाव नहीं होगा तो हमें बीमारियां नहीं होगी, राइट। सो आज लॉ ऑफ लाइफ क्या है? परिवर्तन। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा क्या करो, जब भी कुछ जीवन में परिवर्तन हो, एशिया की पावर लगा लो। एशिया मीन्स एनालिसिस, सिंथेसिस, इंटेग्रेशन एंड एसिमिलेशन, और लास्ट में एडवर्सिटी। तो ये पांच हमने क्यों लगा लो, तो आपको कैसी भी परिस्थिति, भूकंप आ जाए, आपके शरीर में कोई महारोग आ जाए, मृत्यु का समय आ जाए, शरीर छोड़ने का समय आ जाए, तो भी आपको तनाव नहीं होगा, आप हंसते हंसते दुनिया से चले जाएंगे, एक सैंपल बन जाएंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे कि कैसे शरीर को छोड़ना है, राइट। और क्योंकि जीवन का नियम परिवर्तन है, इसलिए आज का जीवन कैसा है सभी का, लॉ ऑफ लाइफ स्ट्रेस। छोटा बच्चा, जवान, बूढ़ा, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सब तनाव में है। किसी से पूछो, सब टेंशन में। सो एवरीवन इन दिस यूनिवर्स इज इन स्ट्रेस, सभी तनाव में। एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है इस तनाव को नापने का, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ। प्रेशर जो होते हैं, दबाव, जीवन में दबाव दो तरह के होते हैं, एक अंदर के प्रेशर होते हैं, हमारे अपने अंदर के प्रेशर, जैसे मेरी नेचर मान लीजिए बहुत बचपन से है, हमेशा टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, जल्दबाजी में रहता हूं। मेरे पिताजी जल्दबाजी में रहते थे, परफेक्शनिस्ट थे, उनको देख के मैं भी परफेक्शनिस्ट बन गया, राइट। हर काम में एक्यूरेट होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, होता है ना, बहुत इसको अच्छी बात समझते हैं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबके जब हम ग्रुप में रहते हैं, जैसे अभी भी हमारा हार्ट का प्रोग्राम होता है, उसमें लगभग 50 से 60 लोग उसमें हमारी टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, खाना खिलाने वाले, खाना बनाने वाले, सब तरह के लोग होते हैं, मैनेजमेंट अकोमोडेशन देखने वाले, सब तरह के, हमारा काफी 100 के आसपास हम पेशेंट्स बुलाते हैं जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी होती है, साथ में उनके स्पाउस को जरूर बुलाते हैं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड बीमार है तो वाइफ को जरूर बुलाते हैं, वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को जरूर बुलाते हैं, क्योंकि बीमारी दोनों मिलजुल के पैदा करते हैं और दोनों को मिलजुल के ठीक करनी होती है, तो वो उनको बुलाते हैं। क्योंकि हमने देखा, पर 60 के 60 व्यक्ति में कभी भी किसी को कुछ नहीं कहता हूं, ना उनकी मीटिंग करता हूं, सबको प्यार से एक मोटी मोटी गाइडलाइन पता होती है सबको कि हमें क्या करना है, वो सब अपना अपना काम, बहुत सुंदर एक क्रिएटिविटी के साथ काम होता है, हर काम में क्रिएटिविटी होती है। अगर मैं वो सब पे अपनी फोर्स लगा दूं कि ऐसे ऐसे करो, तो कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, नयापन नहीं होगा, है ना। तो सबके साथ मिलजुल के कैसे काम करना होता है, तो प्रेशर कॉन्शियस नहीं बनना होता है। ये मेरी हो सकती है बचपन से नहीं, कोई मैं कोई माता पिता, मेरे माँ को देखकर मैं सेंसिटिव और इमोशनल बन गया, बहुत नाजुक स्वभाव हो गया, लागनी स्वभाव कहते हैं उसको, है ना, बातें चिपक जाती हैं अंदर, मिटती नहीं, भावुक हो जाता हूं, बात बात में उदास हो जाता हूं, शॉर्ट टेम्पर, बहुत गुस्सा आता है, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता है ना, मैं अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाता, मेरे अंदर का प्रेशर है, राइट। और चिंता बहुत होती है, कई लोगों को एंजाइटी बहुत होती है, कई लोगों को नींद नहीं आती, मेरा ब्लड प्रेशर है मान लीजिए, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को मोटापा है, मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, मेरे हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है, हार्ट अटैक आ चुका है, मेरे घुटने खराब है, ये मेरे अंदर का प्रेशर है। अब ये प्रेशर तो है अंदर, बाहर के प्रेशर जैसे मान लीजिए मेरे घर में बनती नहीं है, मेरी वाइफ से नहीं बनती है, मेरे हस्बैंड से नहीं बनती, मेरे बच्चों से नहीं बनती, मेरे बॉस कार्यस्थान पर मेरे बॉस से नहीं बनती, मेरे साथी मेरा कोऑपरेशन नहीं करते, मेरे घर में जो नीचे वाले काम नहीं मेरा कहना नहीं मानते, तो ये वर्किंग स्थान का प्रेशर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, बहुत बरसात हो रही है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये बाहर का प्रेशर है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है, ये बाहर का प्रेशर है, लीगल केस कोई चल रहा है कोर्ट में, ये बाहर के प्रेशर है। इन प्रेशर्स को हम इमीडिएटली मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट, किंतु एक चीज हमारे हाथ में है, जब ये रेशियो एक से अधिक हो जाता है ना, प्रेशर डिवाइड बाय कोपिंग एबिलिटी, माना इनर स्ट्रेंथ, आत्मिक शक्ति, जब आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, प्रेशर ज्यादा होते हैं, तो आप तनाव महसूस करते हैं। आप देखो 1970 में जब एसी नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीविजन नहीं था, 60-70 में उस समय साधन नहीं थे, हर चीज का हमें याद है, लाइन लगती थी, कोयले की लाइन, तेल की लाइन, अनाज नहीं मिलता था, इतने प्रेशर्स थे, परिवार बड़े बड़े, 6-7 बच्चे होते थे, इनकम कम होती थी, किंतु उसमें भी इंसान टेंशन में नहीं आता था, कहता ऊपर वाले की मर्जी, कैसे हो भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। और आज इंसान के पास उसकी 5 लाख तनख्वाह है तो भी, मेरे फ्रेंड्स हैं जो एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास करते हैं, मैं तो यहां आ गया 25-30 साल से सब कुछ छोड़ के, अब वो कहते हैं शाम को कभी बात होती है, उनको डर होता है कि मैं, उनको ये कहते हैं डॉक्टर साहब आज मेरे ना 1 लाख रुपया पूरा नहीं हुआ, मतलब उनका डेली का टारगेट 1 लाख रुपया होता है, 1-1.5 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए, तो भी वो खुश नहीं है। उस 1-1.5 लाख रुपये रोज कमाने के पीछे दौड़े हुए हैं, चाहे उनको खुद को हार्ट अटैक आ गया हो, सारी रात सोते नहीं है, 12-12, 1 बजे तक काम करते हैं, तो वो अंदर के प्रेशर्स इतने बढ़ गए हैं और वो इतने टेंशन में रहते हैं, बात बात पे टेंशन होती है। तो ये जो प्रेशर्स हैं, एक तो प्रेशर यू स्ट्रेस कहते हैं, यू स्ट्रेस किसे कहते हैं, यू स्ट्रेस मतलब चैलेंज व्हेन इनर स्ट्रेंथ इज मोर देन द प्रेशर, जब आत्मिक शक्ति ज्यादा होती है प्रेशर से अधिक, तो उसे यू स्ट्रेस चैलेंज कहते हैं। वो जीवन में कुछ अच्छा नया करने की हमारी अंदर कार्य शक्ति पैदा होती है, और एक डिस्ट्रेस होती है जब आत्मिक शक्ति कम है और हमें प्रेशर ज्यादा है। तो आज का टाइम इंसान के पास प्रेशर बहुत थोड़े हैं, मेरे पास मोबाइल है, मैं अमेरिका तक किसी को भी कुछ भी बात कर सकता हूं, कहीं तक मैं दुनिया के किसी कोने से बात कर सकता हूं, कुछ चीज घर बैठे बैठे मंगा सकता हूं, आज मेरे पास हर चीज की सुविधा है, कार भी है, पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, सोना चांदी भी है, सब कुछ है, किंतु थोड़ी सी बात में टेंशन में आ जाता हूं क्योंकि आत्मिक शक्ति नहीं। पहले इंसान के पास कुछ भी नहीं था, मुझे याद है हमारे घर में 11 मेंबर्स थे और 20 तारीख को सैलरी खत्म, 2-3 रुपए बचते थे, तो भी कभी टेंशन में नहीं देखा अपने माता पिता को हमने। आज सब कुछ होते हुए भी आज आदमी हर समय टेंशन में रहता है, एसी रूम में बैठे हुए पसीना आता है उसको, घबराहट में, और उस समय गर्मी में जून की दोपहर में भी पसीना नहीं होता था, टेंशन नहीं होती थी, ठीक है मस्ती से काम करते थे, अंदर वाला एसी काम करता था, आज बाहर वाला एसी में बैठे हुए इंसान परेशान होता है। एक योगी, आप जैसे योगी बैठे हिमालय पर्वत पर, ठंडी है बाहर, वो बाहर अंदर योग में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, परमात्मा से जुड़े हुए, है ना, क्या उसको भूख नहीं लगती है, क्या उसके सिर पे, उसके पास उसको रात में सोने की जगह नहीं चाहिए, क्या उसको जंगल में जानवरों का डर, जंगल में जानवर भी होते हैं, सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, क्या उसको उसका डर नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं, किंतु उसके पास आत्मिक शक्ति अधिक है, इसलिए वो स्ट्रेस फ्री है, तनाव से मुक्त है। आज का इंसान सब कुछ होते भी क्योंकि आत्मिक शक्ति नहीं है, प्रेशर बहुत थोड़े हैं, फिर भी वो बहुत तनाव में है, राइट। यहां ब्रह्म कुमारी में आप देखें, हमें बहुत सारे प्रेशर्स हैं, हमें पानी की, यहां पानी नहीं मिलता है, अब तो बरसात हो रही है, पानी की बहुत किल्लत होती है, एक एक चीज हम बाजार में लेके आते हैं, हमें आम लोगों से ज्यादा महंगी मिलती है, वो कहते हैं शायद ये ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत रिच है, बहुत अमीर है, इनके सफेद कपड़े, साफ सुथरे कपड़े होते हैं, उससे दाग भी नहीं होता है, जबकि हम लोग बहुत बहुत किफायत से रहते हैं, है ना, एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं। ये मेरी शर्ट, मेरी पैंट शर्ट 13 साल पुरानी है, दूसरी जो पैंट शर्ट पहनता हूं 17 साल पुरानी है, 17 साल से वही पहनता हूं, एक एक चीज को हम बहुत किफायत से, हमारा मुश्किल से महीने खर्चा 2000 रुपए में नहीं होता है, हमारी कोई आदत नहीं है, कैसे खराब आदत नहीं है, कुछ भी खाने की पीने की, बाजार में जाने की, सिनेमा देखने की, टेलीविजन देखने, कुछ भी देखने की हमारी आदत नहीं है, 3:30 बजे उठते हैं, रात को 10:30-10:30 बजे सोते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं हम रिच, हमारा व्यवहार ऐसा है, हमारी आदतें ऐसी हैं कि हम सदा खुश रहते हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं, इसलिए कभी हमें तनाव होता ही नहीं। आप देखो एक भी ब्रह्मा कुमार को देखो, एक भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहन को देखो, सदा मुस्कुराते मिलेंगे, सदा आपकी सेवा में हाजिर मिलेंगे, चाहे अकोमोडेशन में हो, चाहे खाना खिलाने पे हो, खाना बनाने में हो, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हो, अकोमोडेशन में, रिसेप्शन में हो, हर आदमी हमेशा वेलकम करता हूं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आत्मिक शक्ति बहुत है। आपके घर में 10 लोग आ जाए स्ट्रेस हो जाते हैं, यहां पर हमारे यहां नीचे देखो तो 20-20 हजार लोग अभी भी, देखो कितने लोग हैं, हर समय 10-15 हजार लोग हमेशा रहते हैं, तो खाना बढ़िया से बढ़िया खाना बनाते हैं, सब कुछ बढ़िया से एक हाइजीनिक एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, और जमीन पे बैठ के नहीं खाना खाते हैं, रॉयल्टी से बैठ के खाना खाते हैं। तो हर चीज प्रॉपर ढंग से होती है, सिस्टमेटिक होती है, पर बिकॉज आत्मिक शक्ति है देखिए, इसलिए तनाव नहीं होता है। अब देखिए मैंने बताया ऑलरेडी, इंटरनल प्रेशर मन के होते हैं, बॉडी के होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर फैमिली के होते हैं, सोसाइटी के, वर्क प्लेस, ट्रैफिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, है ना, टेररिज्म, बहुत सारी बातें हैं। तो वाई हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं आज, तनाव के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, तनाव मुक्त स्वस्थ जीवन शैली पर क्यों बात कर रहे हैं? देखिए आज अगर हम कहें हेल्थ की बात करें, आज के समय में शरीर के हेल्थ की बात करें, तो सर्वे हुआ भारत की चार बड़े शहरों में, कॉस्मोपोलिटन सिटी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, जो वैसे हैं एडल्ट हैं 20 साल की ऊपर की उम्र के, तो उनका सर्वे एक फॉर्म भराया गया, साथ में उनका ब्लड प्रेशर, ECG और शुगर ब्लड टेस्ट की गई, सारी बातें पूछी गई। तो देखने में आया उसमें 100 लोगों में से 30 को हाई ब्लड प्रेशर है। टेस्ट किया गया ना, उनको पता नहीं था उनको हाई ब्लड प्रेशर, चेक करने पता लगा, और 100 में से ECG किया गया, 100 पता लगा, 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी, 14 लोगों को हार्ट की बीमारी है, 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज थी, 100 में से 40% लोगों को ओबेसिटी थी, मोटापे थे, मोटापा था, 10% लोगों को सांस की बीमारियां थी, 35% लोगों को एसिडिटी की बीमारी थी, एसिड रिफ्लक्स होना, 20% लोगों को हड्डियों की बीमारियां थी, और माताओं को, तो बहनों माताओं को स्पेशली 50 की उम्र के बाद 50 से ऊपर परसेंट लोगों में हड्डियों की तकलीफ थी, घुटने खराब, कमर खराब, गर्दन की हड्डी खराब, हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। 10% लोगों को स्किन की बीमारी थी, त्वचा के रोग थे, आंख नाक कान और गले के रोग 10% लोगों को थे, 5% लोग कैंसर थे, 10% लोगों को हेडेक, कोई ना कोई हेडेक, सिर दर्द, कई तरह के हेडेक, 100 तरह के हेडेक होते हैं, इन्फेक्शन कोई ना कोई, गले का इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन कहीं ना कहीं था, और 5% लोगों को हार्मोन जैसे थायराइड की बीमारी थी। तो अगर आप इन्हीं बीमारियों गिने तो बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं। तो ये देखें तो 200 हो गई, 100 लोगों को 200 बीमारियां। आप भी अपने अंदर देख लीजिए, शरीर की बीमारी 2-2 सबको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए अंदर, किसी को नहीं हो तो मुझे बताना, सबको 2-2 तो फ्री में मिली हुई है, कोई कोई इतने महान है उनको 5-5, 10-10 भी है। तो सब इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी मेडिकल फील्ड में, इतनी मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं हम, इतनी एडवांसमेंट में, इतनी मशीनें, इतने दवाइयां, इतने ऑपरेशंस, वो सब होने के बाद भी आज बीमारियां बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। पहले अस्पताल होते नहीं थे, एक शहर में एक मुश्किल से MBBS डॉक्टर होता था, आज डॉक्टरों की बाढ़ आ गई है, नर्सिंग होम्स हॉस्पिटल की बाढ़ आ गई है, गली गली में डॉक्टर्स हैं, गली गली में हॉस्पिटल्स है, और सब जगह भीड़ है। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर्स बढ़े, बीमारियां भी बढ़ गई, घटनी चाहिए थी बढ़नी चाहिए थी, हॉस्पिटल बढ़े, बीमारी घटनी चाहिए थी बढ़नी चाहिए थी, और ही बढ़ गई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहीं प्रॉब्लम है, इसका मतलब हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम इलाज करें तो बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं कम हो रही, बढ़ क्यों नहीं है? और अगर आज मन की हेल्थ की बात करें तो आज हर आदमी जल्दी में है, टाइप ए माना प्रेशर में, जो मैं पहले बात करता टाइप प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। इसी से ऐसे लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा मात्रा में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होती है, ऐसे लोग कैंसर ज्यादा होते हैं, जो हमेशा जल्दी में, प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल। हमारे अंदर अपनी घड़ी है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहते हैं, उसमें हमारे हार्मोन्स के हिसाब से, हमारे सिस्टम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, उसमें सोने का टाइम है, 10 बजे सोने का टाइम है, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने का समय है, प्लानिंग करने का समय, क्लियर वॉयस कहते हैं, मेडिटेशन करने के तुरंत बाद क्लियर वॉयस, क्लियर विजन होती है, जो भी हमारे जीवन के कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इमीजिएटली सोल्यूशन मिल जाता है, अंदर से एकदम क्लियर विजन आती है इसका क्या सोल्यूशन है, राइट? तो आप सभी जानते होंगे। तो उसके बाद हम प्लानिंग, जो घंटों जिनमें 4-4 घंटा मीटिंग करके हम उसको सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, सुबह सुबह 5 मिनट में, 4 मिनट में सारी हमारी प्लानिंग हो जाती है, हम डेली करते हैं। फिर सुबह से नहा धो के तैयार होकर सैर करने का समय होता है ना, डेली प्रातःकाल सैर करने का समय, फिर हम 7-8 7 से 8 मुरली सुनते, परमात्मा महावाक्य को हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, फिर 8 बजे हम नाश्ता करते हैं, फिर हमें 9 बजे से लेकर हम 1 बजे तक काम करते हैं, घर या ऑफिस जहां भी काम कर रहे हो तक या हमारे आश्रम में, फिर 1 से 2 लंच करते हैं, फिर हम लोग 1 घंटा रेस्ट करते हैं। मतलब हर चीज का टाइम है, काम करने का भी समय भी है, लंच करने का समय, डिनर करने का टाइम हमारा 6 से 7 होता है, 6 बजे हम डिनर कर लेते हैं, 7 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है, 7 से फिर उसके बाद हमारा और कार्य का समय होता है, और 9 बजे तो हम 9 बजे तो हमारा डेली अपने मन के सारे दिन में हमसे क्या क्या दिन में चला अपनी दिनचर्या चेक करने का टाइम, दिनचर्या को चेक करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, भरते हैं उसको, एक लेटर लिखते हैं भगवान के नाम, और फिर परमात्मा को याद में जाके सो जाते हैं, 9:30-10 तक सो जाते हैं, और सुबह 3:30 उठ जाते हैं, और 3:30 उठ के हमारी फिर दिनचर्या जैसे सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में मेडिटेशन करते हैं। तो हमारा दिनचर्या हमारी अंदर की घड़ी के अनुसार बनी हुई है, कि तो आज इस दिनचर्या को लोग मानते नहीं है, घड़ी इस घड़ी की दिनचर्या को मानते हैं, 11 बजे काम से आते हैं, 11 बजे डिनर करते हैं, 12 बजे डिनर करते हैं, 2 बजे रात में सोते हैं, फिर 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, तो सारी दिनचर्या खराब हो गई, और ये सबसे बड़ा कारण है, और इसलिए इसे बोलते टाइम प्रेशर बेस्ड लाइफ स्टाइल है, और यही सभी रोगों की जड़ है। फिर सिनिसिज्म, आज सबको दोष दर्शन, जैसे हंस होता है ना, हंस को सबके अंदर मोती दिखाई देते हैं, हंस की आंखों से देखो सामने बहुत सारे कंकड़ पड़े हों, बीच में 2 मोती पड़े हों, 500 कंकड़ के बीच 2, उसको मोती दिखाई देंगे, कंकड़ दिखाई नहीं देते। और एक बगला होता है वो भी सफेद होता है, उसके सामने 500 मोती रख दो, बीच में 2 कीड़े रख दो, उसको मोती नजर नहीं आते, क्या दिखाई देता है? सिर्फ कीड़े दिखाई देते हैं। आज का इंसान घर घर में कलेश क्यों है, टेंशन क्यों है, उसका कारण यही है कि आज हम सिनिकल हो गए, सिनिकल बिहेवियर, एक दूसरे में दोष देखने की आदत पड़ गई, गुण देखने की आदत नहीं। सत्युग जैसा समय, स्वर्ग में जो थे ना हम, हमारा गुणों में व्यवहार था, हम एक दूसरे के गुण देखते थे, जिससे हमारे घर में बहुत, हमारे कार्यस्थान पर, घर पर, सब जगह एक बहुत सुंदर वायुमंडल होता था, बहुत सुखदायी वायुमंडल होता था। और आज के समय में मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, प्रैक्टिकल व्यवहारिक एग्जाम्पल देता हूं, एक लड़का और लड़की है, दोनों का प्यार है, आज की दुनिया में जैसा प्यार होता है, वो लड़के को कहो कि इस लड़की को छोड़कर तो किसी और लड़की से शादी करो, कहता नहीं मैं इससे शादी करूंगा, इसमें इतने गुण है, इतने गुण है, इतने गुण है, मैं तो शादी नहीं करूंगा। लड़की कहती है इसमें, इस लड़के में बहुत सारे गुण है, मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा। अब उनकी शादी कर दो 3 महीने, 3 महीने के बाद पूछो अभी क्या हाल है, उसी लड़के से पूछो क्या हाल है तुम्हारी पत्नी, उस लड़की में क्या हाल है, उसके कैसे, अब वो क्या करेगा, क्या बताए, क्या कहेगा, आप पीछे वाले तो अनुभवी है ना, बोलो, अब उसके गुण नहीं दिखाएगा, अब गुण दिखने आएगा कितने गुण। और वही लड़की जो कहती थी गुण सीखिए लड़के में इतने गुण है, अब वो क्या कहते हैं, क्या कहेगी, इसमें इतने अवगुण है। क्योंकि जब हम रोल कॉन्शियस हो जाते ना, बॉडी कॉन्शियस हो जाते, उसके पहले रोल कॉन्शियस नहीं थे, उसके पहले भंसों का जोड़ा था, अभी क्या बन गए, बगलों का जोड़ा बन गए। जब हम रोल कॉन्शियस हो जाते, मैं ये हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, या मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं तुम्हारा इंचार्ज हूं, मैं तुम्हारा हेड हूं, तब हमको जब वो रोल कॉन्शियसनेस की ईगो देह अभिमान आ जाता है, तब हमें एक दूसरे के अवगुण दिखाई देने शुरू होते हैं। जब हम एक दूसरे को आत्मा समझ के बात करते हैं, मैं भी आत्मा हूं और तुम भी आत्मा हो, तो हमें एक दूसरे के गुण दिखाई देते हैं, हम हंस होते हैं। और जब एक दूसरे को हम देह अभिमान में आके बात करते हैं, रोल कॉन्शियस होकर बात करते हैं, तो हमें दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं। तो ये आज के बिहेवियर, बिकॉज बॉडी कॉन्शियस ईगो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आज घर घर में, पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, माँ बाप को बच्चों में, बच्चों को माँ बाप में, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज में, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर में, क्या दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते हैं, दोष दर्शन इस समाज की एक प्रक्रिया हो गई है। ये एक बहुत बड़ा सिनिकल बिहेवियर हो गया, सिनिसिज्म कहते हैं, और एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी बढ़ने का, राइट। और हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, एक दूसरे के तकलीफ को देख करके, अवगुणों को देख के हमें रहम आना चाहिए, अभी रहम नहीं आता है, क्या आता है, बदला लेने की भावना आती है, ये बहुत खतरनाक बिहेवियर है। आलस से एक आदत बन गई, फियर डर एक आदत बन गई। बीमारी शब्द कहां से आया, बी माना डर, मारी माना बने रहना। अगर आपके अंदर डर है, तो आपके अंदर पूरा हार्मोन और ऑर्केस्ट्रा जो 7 ग्लैंड्स होती हैं हमारे अंदर हार्मोनल ग्लैंड्स, उनके सिक्रीशंस, उनके जो वो सब के सब हेवायर्स चल जाते हैं, केओटिक हो जाते हैं, उसी से हमें सब रोग पैदा होते हैं। तो फियर नहीं है, यहां अगर फियर है तो बाकी सारा सिस्टम खराब हो जाता है। इसी तरह से अटैचमेंट, मोह, ईगो, अहंकार, लस्ट, काम विकार, ग्रीड, लालच, एंगर, गुस्सा करना कोई नहीं चाहता है पर गुस्सा करते सब है। गुस्सा करने वाले को 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक होते हैं। एक बार गुस्सा करने के बाद 3 दिन तक हार्ट अटैक आने के चांसेस 3.5 गुना बढ़ जाते हैं एक बार गुस्सा करने, और दोबारा गुस्सा किया तो कितने और ज्यादा चांस हो जाएगा। एंजाइटी, चिंता करने से हमारे हार्ट अटैक भी बढ़ते हैं और साथ साथ हार्ट अटैक, हार्ट की एकदम इरेगुलर हो जाती है। डिप्रेशन, आज हर चौथे आदमी को डिप्रेशन है, 10% लोग तो दवाई खा के आज सुसाइड बन आत्महत्या करने का कारण डिप्रेशन है। यंग लोगों में डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। नींद ना आना, 10% लोग नींद की गोली खाकर सोते हैं। तो आज देखो इनमें से 6 बीमारी सबको फ्री में मिली है, 2 शरीर की और 6 मन की, है ना। और ये हमारे समाज की हेल्थ है, कंपटीशन, कंपैरिजन, हर जगह जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष बहुत समाज में फैल गया। और स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मिक स्वास्थ्य कैसा है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आइडेंटिटी क्राइसिस है, हर जगह लड़ रहे हैं आपस में, पति पत्नी से लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, हर जगह में ईगो क्लैश, आइडेंटिटी, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, एक आपस में रिगार्ड खत्म हो गया, छोटे बड़े का रिगार्ड भी खत्म हो गया। तो ये अगर समझ जाए कि हम सब आत्मा, हम सबको आत्मा भाई भाई, एक परमात्मा पिता के बच्चे आत्मा भाई भाई, तो ये स्पिरिचुअल एजुकेशन अगर बचपन में मिल जाए सभी को तो क्या होगा। और हमारी नेचर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हम सबका धर्म क्या है, क्या है हमारा धर्म, असली धर्म क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हम पैदा होने के बाद बनते हैं, हमने लेबर रूम में काम किया जब बच्चे पैदा होते हैं, इरविन हॉस्पिटल, लेडी था ना जो हमारा दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, इरविन हॉस्पिटल ना जो इधर अपने जो दिल्ली इंडिया गेट, दिल्ली गेट के पास, तो वहां तो सारा जामा मस्जिद से बहुत पेशेंट्स आते हैं, उधर के भी पूरा एरिया, दरियागंज पूरा दरिया, सारे एरिया बहुत बड़ा एरिया है, यूपी से ही बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो लेबर रूम में एक साथ 4 बच्चे पैदा हो जाते, 3-3 4-4 बच्चे एक साथ एक ही टाइम पे पैदा हो जाते, और कौन सा बच्चा कौन से घर में पहुंच जाए कितना भी ध्यान रखो पता नहीं लगता है, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख कौन ईसाई, कहां कहां पर क्या होता है पता ही नहीं होता है हमको। अभी तो खैर घर में पैदा होता है, पता है हमारे घर में हमारा बच्चा पैदा हुआ, कि तो वहां तो कोई पता ही नहीं लगता, उस समय तो खैर शायद अभी थोड़ा और कुछ बदल गया हो, ये मैं आपको 40 साल पहले बात बता रहा हूं, 40 साल 42 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि अभी हालांकि हम पैर का मार्क लेते थे फिर भी बच्चों का तो सब बहुत मुश्किल होता है, कई बार एक साथ कई कई डिलीवरीज होती है तो प्रॉब्लम होती है। तो हिंदू मुस्लिम तो ये तो पैदा होने के बाद धर्म है, शरीर का धर्म जिस धर्म में जम गए, कि तो हम सबका धर्म क्या है, शांति, सच्चा प्रेम, सुख, अतिंद्रिय सुख, ये हम सब आत्माओं को, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम सब प्रेम से रहना चाहते हैं, हम सब शांति से रहना चाहते हैं, ये हमारा असली धर्म है। तो अगर हमें समझ जाए कि हमारा असली धर्म क्या है तो ना तो ये कम्युनल राइट्स होंगे ना आतंकवाद होगा। आतंकवाद का इलाज कोई SPG नहीं है, कमांडोज नहीं है, बचपन से अपने बच्चों को हमें ऐसे एजुकेशन दें, ऐसा सिखाया जाए कि वो भविष्य में आतंकवाद होगा ही नहीं। ठीक बात है, मैं ठीक कह रहा हूं, हाँ जी। अब देख खुशी किसे कहते हैं, हंसना खुशी है क्या, आप क्या समझते हैं, हंसना खुशी है, यस। हमारे हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, यस दैट इज द राइट डेफिनेशन। हंसना खुशी नहीं है, क्योंकि रावण, रामायण में देखा ना आपने, रावण हंसता रहा, राम मुस्कुराता रहा। तो एक इंटरनेशनल परिभाषा जो है इसकी क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड परिभाषा क्या है, इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन, जो आपने कहा ये अंदर की बात है, खुशी अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। कोई बाहर की खुशी तो हमें डिपेंडेंट बना देती है, पतंत्र बना देती है। वो क्षणिक होती है, बाहर की, मुझे कुछ मिल गया मैं खुश हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर वो मुझे बार बार इच्छा पैदा होगी और इच्छा पैदा होगी। इच्छाओं से आदमी एक पतंत्र बन जाता है, गुलाम बन जाता है। बाहर की शांति, बाहर का प्यार, बाहर की खुशी मुझे गुलाम बनाती है, इच्छाओं का गुलाम बना देती है। एक जगह व्यसन हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। खुशी शांति अंदर की चीज है, सच्चा प्रेम अंदर की चीज है, खुशी अंदर की चीज है, आनंद अंदर की चीज है, ये अंदर से मैं आती है। तो ऐसे जब हम संतुष्ट होते हैं अपने जो भी हम अंदर अंदर से, तो हमें खुशी आती है। ये इसकी परिभाषा है। इज एनी वन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड? क्या इस संसार में कोई खुश है? यस, खुश है कोई? क्या समझते हैं? बिकॉज खुशी कहां से आती है? जब हमारा मन और बुद्धि पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। अगर मेरे मन में शुद्धि है, खराब विचार चल रहे हैं, मेरी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पा रही है, अशुद्ध है, भ्रष्ट है बुद्धि, तो मैं खुश नहीं रह सकता। जब शांति माना, हम जब वर्तमान में रहते हैं, पास को फुल स्टॉप लगा देते हैं, भविष्य को फुल स्टॉप लगा देते हैं, वर्तमान में अपने सत्य में टिक के परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड होकर काम करते हैं, इसको शांति कहते हैं। क्योंकि 90% विचार हमारे कहां से आते हैं? पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट से आते हैं, जो पास्ट में हमारी भावनाओं को चोट पहुंची है बचपन से लेकर के, और जो हमारे विचारों को चोट पहुंची है, वो जो पुरानी घटनाएं हमारे दिमाग में छपी रहती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, चित्त में छप जाती हैं, उसकी वजह से 90% विचार आ रहे होते। उसी चश्मे से हम सारी दुनिया को देखते हैं, वर्तमान को देखते हैं, इसी कारण विचारों की संख्या बढ़ जाती है, और भविष्य में डर लगता है क्या होगा। और जब हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि पास्ट में अभी तक जो कुछ हुआ मेरे अपने कर्मों का फल था, किसी और के कर्मों का फल मुझे नहीं मिला है। मैंने जो किया, मुझे हार्ट की बीमारी हुई, डायबिटीज हुई, या मुझे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे बेइज्जती करते, सम्मान नहीं देते, मेरे अपने कर्मों का फल है, मेरे अपने व्यवहार का फल है। जो मैंने बोया वही मैंने काटा। तो उसको फुल स्टॉप लगा दें, अब अपने सत्य में टिक करके परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड होकर कर्म करें, तो उसे 10% विचार ही आएंगे, थॉट ट्रैफिक कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं शांति। तो जहां शांति है वहां खुशी हो सकती है, जहां अशांति है, विचार बहुत तेज है, नेगेटिव विचारों से भरा हुआ आपका मन है, तो वहां कभी खुश नहीं हो सकते। ट्रूथफुलनेस, सत्यता है, सत्यता है तो आप खुश हैं। फियरलेसनेस, अगर आप निडर हैं, निर्भय हैं, तो खुश हैं। डरा हुआ व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। पावर ऑफ टॉलरेंस, अगर आपके अंदर सहनशीलता है तो आप खुश हैं। सहनशीलता का मतलब क्या है? सहन करके समा लेना। आज का इंसान गुब्बारे की तरह से, उसे इज्जत मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। कोई मुसीबत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि गुब्बारे में हवा बढ़ता जा रहा, फूलता जा रहा है। एक आदमी सुई लेके आया, निडल लेके आया, निडल टच कर दी, तो क्या होता है? इतना बड़ा गुब्बारा इतना सा हो जाता है। आज का इंसान देखो, एक समय तो ऐसा फूला नहीं समा रहा है, और थोड़ी देर में देखो ऐसा इसको जैसा कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा। तो अगर सदा खुश रहना, तो सहनशीलता बहुत जरूरी है। सहन शक्ति नहीं, सहन तो हम सब कर लेते हैं, पर अंदर बोलते रहते हैं, उसी कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर होता है, हार्ट डिजीज होती है, हड्डियां खराब होती हैं, घुटने खराब होते हैं, रीढ़ की हड्डी खराब होती है, माइग्रेन होता है ना? सहन शक्ति नहीं, सहन करके समाने की शक्ति, सहन करके भी ठंडे रहे, उसे कहते सहनशीलता। ऐसी सहनशीलता हमारे अंदर आवश्यक है अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं। इजी नहीं, सरल स्वभाव, जहां मिल गया रहने को, जहां मिल गया जैसा मिला खाने को, बस इजी सरल स्वभाव है। हर बात में सरल है, सोचने में सरल, बोलने में सरल, करने में सरल, रहने में सरल, व्यवहार में सरल, हल्के रहते हैं हमेशा, ऐसा व्यक्ति सदा खुश रह सकता है। जो व्यक्ति हमेशा एक टैग लेके घूमता है अपने साथ, एक लेबल लेके घूमता है, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं सकता, थोड़ी बात में नाराज हो जाएगा। जो मधुर है, जिसके बोल में मधुरता, मिठास है, व्यवहार में मिठास है, वो खुश रह सकता है। जो लार्ज हार्टेड है, जिसकी दिल बड़ी है, वो खुश रह सकता है। दिल बड़ी का मतलब ये दिल बड़ी नहीं, ये दिल बड़ी होगी तो सांस में फूल जाएगा, है ना, चलानी चाहिए। जो दूसरे गलती को समाना जानता है, क्योंकि गलतियां हम सभी करते हैं, गलतियां हम सभी करते हैं, नहीं गलतियां हम सबसे होती है, और दूसरी गलती को देख के हम उसको बढ़ा दें, नहीं। मुझे याद आती है बड़ी दादी जी की, दादी प्रकाश मंत्री, अब सब पांचों उंगली तो बराबर नहीं होती है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं, 40 के 40 बराबर तो नहीं होते, एक आईएएस बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, कुछ चपरासी भी बनते हैं उसमें से, उसी टीचर तो वही होता है। तो दादी जी के पास एक कोई थे, हमारे पास था ना 48 डिपार्टमेंट से, एक बड़ा इंचार्ज भाई आया उसको लेकर के, हेड एचओडी, एक भाई, ये भाई दीदी दादी जी एक भाई का व्यवहार ठीक नहीं है, उसने ये गलती की है। तो दादी ने कहा ठीक है इस भाई को छोड़ के आप जाओ। मैं दादी के पास ही बैठा था, मैं देखा दादी जी क्या कर रहे थे, उसको बात कर रहे थे। दादी ने उसको सारी, जब से वो आया था ना, काफी सालों के रहते हुए यहाँ पर रहते हुए, ये माउंट आबू ना, पांडव भवन है हमारा, हमारे यहीं पर थोड़ी सी दूर यहाँ से माउंट आबू में, तो वहीं पे वहीं की बात है। तो दादी जी ने उसको, उसकी महिमा कर रहे थे, दादी आपने इतनी सेवा की, इतना किया, ओम शांति भवन आपने दिन रात सेवा की, आप युवा माता यात्रा में गए, आपने इतनी चेन्नई से लेके यहाँ तक यात्रा की, कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक यात्रा की, इतनी सेवाएं आपने की हैं, ये किया वो किया, दादी उसकी महिमा की जा रही है, महिमा की जा रही है, और आपने ये किया, मतलब काफी सारी उसकी जो जो दादी जानती थी। और उसको फिर दादी ने जो प्रसाद था प्रसाद दिया, एक कोई गिफ्ट रखी थी उसको वो दिया, फिर कुछ असिस्टेंट उनको कहा वो लेके आओ, दूसरी मिठाई, दूसरा प्रसाद लेके आओ, दूसरी मीठी टोली लेके आओ, वो मंगाई, फिर एक चीज और गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट उनको मंगाई, उसको दी। और इतने देर में भाई वो रोने लगा कि दादी मैं कभी गलती, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो मैं देख रहा था कि दादी ने एक बार भी उसको नहीं कहा कि तुमने ये गलती की, बल्कि उसका संपूर्ण रूप उसको दिखाया कि तुम किस लिए यहां आए थे और तुम क्या कर, तुम कितने अच्छे हो। जब उसको मिरर दिखाया ना, तुम कितने अच्छे हो, तब उसको अपने वो दाग दिखाई दिया मिरर में, दर्पण में दाग दिखाई दिया कि मेरे से गलती हुई। और दादी ने उसको ये भी नहीं कहा, नहीं भाई कोई बात नहीं, उसने कहा ना नहीं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हो, मैं मुरली से बाहर निकलते हूँ ओम शांति भवन से, तब मुझे चिट्ठी पर लिख के दे दिया करो, मैं हमेशा तो खाली यहां पर बैठी होती हूँ, कभी भी आके मुझसे मिल लिया करो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये ऐसा व्यवहार, इसे बोलते प्रेम का एडमिनिस्ट्रेशन, लवफुल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। हमने देखा ब्रह्मा कुमारी की विशेषता यही है कि यहां पर प्रेम का व्यवहार है, प्रेम का एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी को डांटा नहीं जाता, किसी को निकाला नहीं जाता है, कि सबसे प्रेम पूर्ण। कोई हम गलतियां करते हैं कि तो उनको भी उनको साइन करके समाया जाता है, उनके सामने एग्जाम्पल अच्छा रखा जाता है, अपने खुद का एग्जाम्पल रखा जाता है, सहनशीलता का एग्जाम्पल रखा जाता है, जिससे कि वो अपने आप ही सुधर जाते हैं। कुछ अगर कुछ कारण, कुछ लोग जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण जाते हैं, कि तो हमारे यहाँ ऐसा व्यवहार नहीं होता। मैं 29 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर, मैंने एक बार भी नहीं देखा किसी को इस तरह से व्यवहार किया गया हो, कि सबके साथ दादियों का व्यवहार, बड़ों का व्यवहार ऐसा होता है, बहुत लवफुल होता है, अकोमोडेटिंग होता है, लॉफुल नहीं होता है। लॉ भी है तो लव में लेस्ट है, लॉ अंदर है, ऊपर से कोटिंग किसकी है, प्यार की कोटिंग है। लगता नहीं कि लॉ है, जैसे माता पिता ही बच्चों को सिखाते हैं, सिखाते तो है कि तो डांट भी लगाते हैं, किंतु किससे, प्यार से। तो ऐसा ही यहां का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये है, इसलिए कहते हैं इसको ये कि दुनिया क्या है, ये ज्ञान सरोवर क्या है, क्या है, आपने बेगमपुर देखा कभी, बेगमपुर देखा कभी, नहीं देखा है जी, कहां पर है, मेरठ में, बेगम, जहां कोई गम ना हो, तो ये ज्ञान सरोवर बेगमपुर है, राइट, राइट तो ये बेगमपुर है और आप उसके बादशाह हैं। ऐसी दुनिया में हम रहते हैं, हमारा शांतिवन जहां से मैं आया हूं बेगमपुर है, कोई गम नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम रूहानी फखर में रहते हैं, ईश्वर फखर में रहते हैं, हमारे जेब में कुछ पैसे नहीं है, हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, दुनियावी तरह से नहीं रहते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया ना, हम थोड़े से पैसे हमारा गुजारा हो जाता है, शायद एक पैसा ना भी होते हुए गुजारा हो जाए। हम फैशन नहीं करते, बहुत क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, सिंपल तेल, सरसों का तेल यूज करते हैं, बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं। हमें हम एकदम बेफिक्र हैं। ऐसा बेगमपुर, अगर हम आत्मिक शक्ति ज्यादा है तो कोई प्रेशर हमारे लिए प्रेशर है ही नहीं, राइट। एम्पैथी, रहम, है ना। एक बहुत सुंदर बात दादी जी कहा करती थी, जिसके अंदर अहम है ना, वो उसके अंदर वहम आ जाता है। जरा अहंकार है ना, उसके अंदर वहम माना, मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। वो ना अपने ऊपर रहम कर सकता है, ना दूसरों पर रहम कर सकता है। अहम से वहम आता है और वहम से रहम खत्म हो जाता है। ना खुद पर रहम करता है, ना दूसरों पर रहम करता है। इसलिए अगर हमें दूसरों पर रहम करना है, अपने ऊपर रहम करना है, दूसरों पर रहम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अहम भाव से मुक्त होना पड़ेगा। लव, सच्चा प्यार। प्यार माना क्या? जो जैसा भी है, एक अंग्रेजी में परिभाषा है प्यार की, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। इस विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से सम्मान के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और उसके बराबर पालना करना। जो आपकी महिमा कर रहा है और जो आपको गाली दे रहा है, दोनों को बराबर ट्रीट करना, उसे बोलते हैं प्यार। और हमारे दिल को ऐसा ही प्यार चाहिए। आज हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज जजमेंटल प्यार हो रहा है, सेल्फिश लव है, स्वार्थी प्यार है, इसलिए हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है, राइट। सेक्रीफाइस, त्याग। त्याग करना बहुत जरूरी है। लेने में भी खुशी, देने में खुशी, पर देने की खुशी बहुत ज्यादा हो, देने की खुशी बहुत ज्यादा होती है। और संतुष्ट रहना, समय से ज्यादा नहीं, भाग्य से पहले नहीं। तो आज 95% से अधिक बीमारियां स्ट्रेस से रिलेटेड है, साइकोसोमेटिक है। ये हमने जो रिसर्च की थी, वो रिसर्च जो माउंट आबू DRDO से मिलकर की और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया, और ये रिसर्च पिछले हमने पब्लिश की 2011 में माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल के नाम से। और रिसर्च हमें 2013 में बताया गया कि आपकी जो आपने रिसर्च पब्लिश की है, ये वर्ल्ड की टॉप 20 रिसर्चेस, लगभग हर साल 2 मिलियन 20 लाख रिसर्च पब्लिश होती है सारे विश्व में टोटल मिला के, उसमें से नंबर वन है। इस रिसर्च को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, सबसे ज्यादा लोगों ने अपने रिसर्च में डॉक्यूमेंट किया, डॉक्टर्स ने देखा, रिसर्चर्स ने देखा, तो टॉप 20 में नंबर वन रही। और ये रिसर्च हम फिर 2013 में पेपर बताया, तीन महीने बाद बताते रहते हैं, 2015 नवंबर तक 2 साल 4 महीना लगातार विश्व में नंबर बनते रहे। और ये भारत की अकेली रिसर्च है जो टॉप 20 में नंबर वन पे रही भारत की। और फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इसको डॉक्यूमेंट किया कि मेडिटेशन एंड, एक उन्होंने साइंटिफिक स्टेटमेंट जारी किया था 2017 में कि मेडिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन, कि मेडिटेशन के द्वारा हृदय रोग, हृदय संबंधी रोग जो है उनको कैसे, उसके खतरे जो होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स को कैसे कम कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि इसके द्वारा ना खाली हार्ट की बीमारी बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे जिनको व्यसन होते हैं, स्मोकिंग करते हैं लोग, शराब पीते हैं, जिससे भी हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, उनको भी काफी मात्रा में कम कर सकते हैं सही ढंग से इसको यूज करें। तो सोल्यूशन क्या है? जितने भी आज हॉस्पिटल्स हैं भारत में, विदेशों में मेडिकल कॉलेज है, सब में सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। और बॉडी हम कब बनते हैं? मरने के बाद कहते हैं बॉडी लेके जाओ। किसी भी स्कूल, किसी भी मेडिकल कॉलेज में भारत में या विदेश में, ना तो आत्मा के बारे में पढ़ाते हैं, ना तो मन के बारे में पढ़ाते हैं। डॉक्टर्स को पता ही नहीं मन क्या होता है, डॉक्टर्स को पता ही नहीं आत्मा क्या होती है। उनका दोष नहीं है, उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं है, जबकि सारी बीमारियां मन से पैदा होती है। साइकोसोमेटिक कहते हैं ना, तनाव मन में आता है और मन का सोर्स आत्मा है, आत्मा मालिक है, मन उसकी एक सूक्ष्म शक्ति है, राइट। तो जितने भी मतलब जो विश्व में स्वास्थ्य, जिसको मैं छोड़ देता हूं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, जिसमें मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे हम स्वस्थ हैं। खाली बीमारी को ना आने को स्वस्थ नहीं कहते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दुनिया में कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है जिससे हम आत्मिक शक्ति को बढ़ा सके। ओनली टेक्निक टू इंक्रीज कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ इज योग और मेडिटेशन, जो आपका विषय है, राइट। योग या मेडिटेशन का मतलब क्या है? योग का मतलब कोई प्राणायाम नहीं है, आसन नहीं है, कोई क्रियाएं नहीं है। मेडिटेशन का मतलब वो नहीं है, वो तो फिजिकल बॉडी के लिए हम करते हैं। जस्ट रियल वर्ड योग का मतलब क्या है? कनेक्शन, जुड़ना। किससे जुड़ना? सत्य से जुड़ना, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना, अपने सत्य से जुड़ना, ये योग है। और सत्य की परिभाषा क्या है? दो विशेषताएं हैं सत्य की। एक सत्य सदा होता है, एटर्नल होता है, उसका जन्म और मरण नहीं होता है। दूसरा सत्य अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील होता है, सदा एक जैसा रहता है। अच्छा, इंसान का सत्य क्या है बताइए? हमने अपने आप को देखा बचपन से, माता पिता को देह के रूप में देखा, संबंधों को देह के रूप में देखा, तो देह तो बदल रही है रोज। हम 2.5-3 किलो के पैदा हुए थे, 70 किलो के हो गए ना, शक्ल बदल गई, सब कुछ बदल रहा है, माता पिता बदल गए, चले गए, आज है कल थे हमारे पास, आज नहीं है, नहीं? तो ये तो सत्य है क्या? कभी कोई मां पैदा होती है क्या? कभी कोई बाप पैदा होता है क्या? डॉक्टर पैदा होता है क्या? नहीं होता ना, तो ये तो सत्य नहीं है। तो किससे जुड़ना है मुझे? सत्य क्या है? जैसे मैंने कहा ना, ओम का अर्थ क्या है? ओम माना अहम प्लस मम, अहम आत्मा मम शरीरम, मैं कौन हूं? सत्य क्या है? सत्य सदा है, आत्मा सदा है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो मैं जो आत्मा हूं, बीइंग एनर्जी हूं, ये सत्य से जुड़ जाए। ह्यूमन बीइंग शब्द है ना, दो शब्दों से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आए, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है सॉयल, मिट्टी, और बीइंग शब्द का मतलब लाइफ फोर्स, सोल। तो इसमें सोल SOIL आई है, इसमें यू है। आई से आईनेस माइनस, आईनेस और माइनस, आई से ईगो आती है, मैपन आता है, और माई से मैपन, मेरापन, अर्थात अटैचमेंट आती है, मोह आता है, और आई से इलनेस आती है, बीमारी आती है। ये हमारा आउटर सेल्फ, बॉडी कॉन्शियसनेस, आउटर सेल्फ। और ये बीइंग माना लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स माना जीवनी शक्ति, माना यू, यू माना यूनिवर्सल, वसुदेव कुटुंबकम। वीनेस, वेलनेस आती है। अगर आउटर सेल्फ कॉन्शियस जब हम होते हैं, उसके तीन मुख्य रूप हैं, एक तो बॉडी है, एक रोल है, एक मटेरियल है। दे अभिमान, जो हमारा रोल समाज में प्ले करते हैं, और हमारे साथ जो भी प्रॉपर्टी होती है, तीन चीज मुख्य हैं जो आउटर सेल्फ की, जो हमारी भारी चीजें हैं। ये तीनों के तीनों अनस्टेबल हैं, तीनों सत्य नहीं है, असत्य हैं तीनों, इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और पांचों विकारों का जन्म इसी से होता है। कहां विकार क्यों होता है? किसी को हम ऐसा बना लेना चाहते हैं अपना, जो सर मेरे लिए हो, मेरे लिए चाहिए, किसी को तो देखे भी नहीं। इन्फेचुएशन, वो प्यार नहीं होता, इन्फेचुएशन होता है, आकर्षण होता है, देह का आकर्षण होता है, नाम रूप का आकर्षण होता है। क्रोध, जो मैंने अपने कंफर्ट जोन में इकट्ठा किया, उस तरफ कोई देखे, उस तरफ कोई आए, तो उसे क्रोध पैदा होता है, वो भी इनसिक्योरिटी है, डर है, इसका हम क्रोध करते हैं। लोग अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा इकट्ठा कर लें, दूसरे का हिस्सा भी अपने पास इकट्ठा कर लें, ये लोग हैं। मोह, जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो मेरे आसपास ही रहे। अहंकार, जो इकट्ठा कर लिया उसका अहंकार हो जाता है, और इसी से बाकी हमारी 10, इनको आसुरी स्वभाव कहते हैं, असुरों के नेचर है ये पांच विकार, और इनसे 10 आसुरी संस्कार पैदा होते हैं, आसुरी आदतें। जब इनके वश होकर हम कर्म करते हैं, तो उनसे हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे आलस्य पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है, उससे दोष दर्शन की आदत पड़ती है, बदलने की भावना पैदा होती है, शक अनुमान पैदा होता है, जिसको हम स्किजोइड नेचर कहते हैं, आजकल कहते हैं स्किजोफ्रेनिया हो रहा है लोगों को बहुत, एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो गया, निश्चय खत्म हो गया, शक करते हैं, अनुमान लगाते हैं, चिंता और भय पैदा होती है, आदत पड़ जाती है, चिंता और भय की आदत, आलस्य की आदत, खूब सो लेने के बाद भी आलस पड़ता है, अलबेलेपन, दोष दर्शन की आदत पड़ गई, बदलने की भावना, शक अनुमान की आदत पड़ गई, चिंता भाई की, जल्दीबाजी की आदत पड़ गई है, ईर्षा द्वेष की आदत पड़ गई। ये 10 आदतें, इसी को तनाव कहते हैं।
और जब आदमी तनाव में होता है, उसका मूड खराब होता है, तब गलत खाना खाता है, रॉन्ग मूड रॉन्ग फूड खाता है। ऐसे 100 से ज्यादा मूड शडिंग हुए। जब आप अंदर से कड़वाहट महसूस करते हैं संबंधों में, तो मीठा खाने को दिल करता है, मीठा खाकर कंपनसेट करते, चोरी से भी खाते हैं। और जब हम विचार, जब स्ट्रेस होती ना, तनाव, और हम खाने के लिए जी रहे होते हैं, खाने के लिए जीते हैं, खाने में खुशी ढूंढते हैं, खुशी अंदर नहीं है, खुशी खाने में ढूंढ रहे हैं, और ऐसे आदमी को नींद नहीं आती, क्योंकि विचार बहुत तेज चल रहे होते हैं, सोने जाते हैं 10 बजे, नींद आती है 2 बजे, तो सुबह उठते भी देर से, फिर सैर भी नहीं कर सकते, और ऐसा आदमी को टेंशन में रहता है तो एडिक्शन में चल जाता है, मतलब शराब क्या करेगा, टाइम पूरा हो गया, बस मैं एक पूरा करता हूं, तो ऐसा आदमी तनाव में रहता है, ऐसा आदमी फिर गलत नींद की गोली खाएगा, है ना, चाहे कॉफी ज्यादा पिए, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, उसमें एक बहुत कैफीन होती है, सिगरेट पीड़ी पिएगा, शराब पिएगा, नशा करेगा, अफीम खाएगा, नींद की गोलियां खाएगा, तो इससे आदमी बीमार होता है। इसकी बजाय अगर सोल कॉन्शियस हो जाए, जैसे पानी की झील के पास जाओ तो ठंडी हवा लगती है, और आग के पास जाओ गर्मी लगती है, तो जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस आग की भट्टी के समान है, और पानी की आत्मा की स्थिति पानी की झील के समान है, तो इससे फुल प्रूफ सिक्योरिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है, और आत्मा के 7 गुण नेचुरल गुण है, बाहर के नहीं, अंदर के गुण है, ज्ञान मन सत्य की समझ, ABCD, आत्मा परमात्मा कनेक्शन ड्रामा, प्योरिटी, इस ABCD से पवित्रता आती है, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, एक बाप के बच्चे आपस, भाई भाई, सी माना फिर शांति माना वर्तमान में रहना, पास को भविष्य को फुल स्टॉप लगा दो, वर्तमान में अपने सत्य में टिके, परम सत्य बाप से का माइंड हो, 10% विचार आएंगे, प्यार माना सबको एक्सेप्ट करना, खुशी माना, हैप्पीनेस माना, जो मिला जाता उसमें संतुष्ट रहो, सबसे प्यार है तो परमात्मा से मिल सकते हो, मुझे इससे नफरत है, इससे नफरत है, इसको मैं देखता हूं, परमात्मा आपके परमात्मा के साथ की अनुभूति नहीं कर पाओगे, आनंद माना गोइंग बियॉन्ड, आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाती है, 8 शक्तियां, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, 8 शक्तियां, 7 एनर्जी अपने अंदर आ जाती है, जब आत्मा 8 शक्ति 7 एनर्जी है, तो जब व्यवहार में आता है तो 36 दैवी गुण व्यवहार में दिखाई देते हैं, सत्यता, निर्भयता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, दृढ़ता अपने व्यवहार में दिखाई, 36 ऐसे दैवी गुण, तो जब आदमी ऐसा होता है तो स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रहता है, ऐसा आदमी जीने के लिए खाता है, खुशी उसके अंदर है, वो ज्यादा मात्रा में सलाद खाएगा, फल खाएगा, सब्जियां खाएगा, जो सफाई, पहला काम खाने का पोषण नहीं है, पहला काम सफाई है, सेकंड काम, फिर वो समय पर सैर करेगा, समय पर उठेगा, समय पर सैर करेगा, और समय पर सोएगा, अच्छी नींद आएगी, 4 घंटे में फ्रेश हो जाएगा, 10 बजे सोएगा, 2 बजे उठ जाएगा, और ऐसा आदमी ना उसको चाय की जरूरत है, ना कॉफी की जरूरत है, ना कोई सिगरेट बीड़ी की जरूरत है, ना शराब की जरूरत है, सदा खुश, ऐसा आदमी सदा स्वस्थ रहता है, यही हमें इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने इस प्रोग्राम के द्वारा, मैं छोड़ देता हूं सब बातें, ये देखिए हमने इसके द्वारा हमने जो रिसर्च की है वो हमने सिद्ध किया कि हमारे अंदर जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, स्ट्रेस रिस्पांस एकदम कम हो जाती है 1 हफ्ते में, और रिलैक्सेशन रिस्पांस बढ़ जाती है, हम हर चैलेंज को इजीली फेस कर सकते हैं, हमारे हार्मोन्स परिवर्तन हो जाते हैं, और हमारे अंदर, ये मैं दिखाता हूं आपको, अपनी एंजियोग्राफी दिखाता हूं, छोड़ दीजिए बाकी से, मतलब आंख खोले भी आप अल्फा रिदम, पीसफुल रिदम में रह सकते हैं, काम करते करते हम पीसफुल रिदम, शांत प्रेम की रिदम, ईजी करके हम देख सकते हैं, ये जो हमने ईजी करके दिया ना पेशेंट्स का, हार्मोन्स भी टेस्ट किए थे, कि 1 हफ्ते में इतना परिवर्तन हो जाता है, अल्फा रिदम, थीटा रिदम, डेल्टा रिदम आ जाती है, आंख खोले खोले कार्य करते करते, तो ये हमने किया, और एंजियोग्राम ये ब्लॉक भी, देखिए लाइट थोड़ा डिम करें, 1 मिनट 2 मिनट में देख लेंगे, ये 90% ब्लॉक खुल गया है, ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक खुल गया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में, देखिए यहां पर इतना लंबा ब्लॉक खुला है, 100% ब्लॉक भी खुले, ये राजयोग मेडिटेशन की एनर्जी जो है उससे आपकी ब्लॉक, शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी से कैसे ब्लॉक खुल जाते हैं, कहते हैं पत्थर, सच्चे दिल का स्नेह पत्थर को भी पानी बना देता है, ये 100% ब्लॉक खुल गया, ये मल्टीपल ब्लॉक्स खुल गए, 80 और 90% ब्लॉक खुल गया, इस पेशेंट को 2 बार हार्ट अटैक आया था, हार्ट की पंपिंग नॉर्मल 60% होती है, इसकी 30% रह गई थी, 1 साल बाद ही देखो तो वापिस 45% हो गई, मतलब हार्ट की मसल भी नहीं डिजनरेट हो गई, ये देखिए 80% ब्लॉक खुल गया, ये हार्ट की पंपिंग 20% रह गई थी, एक साल बाद 50% हो गई, नॉर्मल हार्ट बन गया है ना। ये देखिए ब्लॉक खुल गया, ये देखिए 100% ब्लॉक खुला। हर ब्लॉक के पीछे जैसे ब्लॉक बढ़ गए कंट्रोल ग्रुप में, डाइट से एक्सरसाइज से ब्लॉक नहीं खुलते हैं, परमानेंटली ब्लॉक खुलते हैं, क्योंकि हमारे हम एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं कि आपकी आपके विचार कैसे चलते हैं अंदर। हर ब्लॉक बताता है कि आपके विचार अंदर कैसे, आपके सोचने का ढंग क्या है, आपका व्यवहार कैसा है। और देखिए एक एंजियोग्राफी, ये 100% ब्लॉक है ये आर्टरी, एक साल पे दोबारा रिपीट किया, पूरी आर्टरी खुल गई। तो बेसिक यही मैं कहना चाहता हूं, इस तरह से हम करते हैं, 50 या 60 पेशेंट बुलाते हैं ग्रुप में, हस्बैंड वाइफ सब इकट्ठे आते हैं और उनको हम अपने साथ 7 दिन रखते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं बॉडी के बारे में, राजयोग के बारे में, मन और बॉडी के बारे में, कैसे राजयोग से अपने आप को ठीक करना है, भोजन कैसा होना चाहिए, सैर कैसे होनी चाहिए, नींद कैसी होनी चाहिए, हमारा सारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर उनको मेडिटेशन करना भी सिखाते हैं और उसका प्रयोग करना सिखाते हैं। और अभी तक हम स्कूल के बच्चों को भी सिखा रहे थे, कोविड के टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और जिनको ब्लड प्रेशर डायबिटीज है उनके भी, अभी तो हमने डायबिटीज का प्रोग्राम शुरू किया, डायबिटीज और मोटापे का प्रोग्राम भी शुरू किया, और अभी तक हमने 11,000 लगभग हार्ट पेशेंट जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी थी उनको लिया है, 180 ग्रुप्स हो चुके हैं, और भारत के विश्व के 140 देशों में जहां जहां ब्रह्मा कुमारी की प्रेजेंस है वहां से भी पेशेंट्स आते हैं। तो मेन मैसेज क्या है, स्पिरिचुअल केयर पहली बात है, जो भी काम करो चाहे घर में करो चाहे बाहर करो, बी नेचुरल, हम आत्मा हैं, आत्मा समझ कर काम करो। और कभी मत कहो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, नहीं, हम पैदा ऐसे नहीं हुए थे, हम आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, हैप्पी सोल। इसके लिए सुबह सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठो, 4 बजे से 4 से 4:45 तक 45 मिनट में से आधा घंटा भी आनंद की स्थिति में रह जाओ, आत्मा परमात्मा से लवलीन हो जाए, तो आपका पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा ठीक हो जाता है, एकदम म्यूजिकल हो जाता है, संगीतमय जीवन बन जाता है, सारा दिन शांति प्यार खुशी से काम करते रहोगे। तो सुबह सुबह इसलिए ब्रह्ममुहूर्त का बहुत विशेष, इसे कहते हैं अमृत बरसता है, ये अमृत कुछ और नहीं, आपके हार्मोन्स जो है बैलेंस में निकलते हैं, जिससे आप और मेंटल 8 बजे तक आप चुप रहिए, 8 बजे तक बिल्कुल चुप रहिए, और उसमें 8 बजे तक आप साइलेंस में रहिए, और अपने अंदर टीम अर्थात मन के विचार भावना वृत्ति और स्मृति पॉजिटिव रखिए। उसके लिए मुरली परमात्मा के मावा के मुरली सुनते हैं, 100% पॉजिटिव टीम है 8 बजे तक, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन निकल रहा होता है, अगर वो एक बार शांति से निकल गया, बैलेंस में निकल गया, तो अगले सारा दिन आप शांति प्यार खुशी से काम करते रहेंगे। और फिजिकल केयर, इसके लिए पहले फिजिकल केयर में पहली है बीन ईट नेचुरल, ज्यादा मात्रा में फल सब्जियां अंकुरी दलिया रोटी सब्जी दूध दही दीजिए, सात्विक भोजन परमात्मा की याद में बनाइए, परमात्मा की याद में बातें करते मत खाइए, अच्छे से चबाइए। दूसरा बीन द लैप ऑफ नेचर, परमात्मा की याद में सुबह सैर करिए सूर्योदय के बाद 45 मिनट पेट साफ करने के बाद, और शाम को सनसेट के पहले आधा घंटा सैर कर लीजिए, 10 बजे सो जाइए, 9:30 सो जाइए, 3:30 उठ जाइए, 6 घंटा सो जाइए, और उठ के मेडिटेशन करिए और प्रॉपर मेडिसिन खाइए, जो भी दवाइयां हैं वो खाइए, एंजियोप्लास्टी बाईपास भले करा लीजिए, पर याद रखिए परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट आपको अपने अंदर से अपने व्यवहार को बदलना होगा। ओम शांति।